Hare Krishna, Hare Krishna, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Kiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Shtotrasata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Sri Sri Radha Gokula Nanda Ki Jaya Sri Sri Gaurnidai Ki Jaya Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Shri Radha Damodar Ki Jai Shri Shri Yashoda Damodar Ki Jai Shri Damodar Ashtakam Ki Jai Shri Kartik Mas Ki Jai Gaur Premanande Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuron Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kalpat Pripasindubhya Evacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। अब ये कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक महीना। इसे हम दामोदर महीना भी कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि साल के जो 12 महीने हैं वो भगवान के विभिन्न चतुर्भुज रूपों के नाम के पीछे बतलाए गए हैं, जैसे कि ये जनार्दन, केशव, श्रीधर इत्यादि। तो ये महीना है दामोदर। साथ साथ में इस महीने में विशेष रूप से राधा दामोदर की उपासना होती है। जैसे पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे कि ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है, और जो श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं और श्री कृष्ण की उपासना करते हैं इस महीने में, उन्हें बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है भक्ति में। जो वास्तव में भक्त होते हैं वो भौतिक चीज नहीं चाहते हैं अपनी सेवा से, केवल अपने भक्ति में वृद्धि हो यही चाहते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी का महीना होने के कारण इस महीने में जो भी थोड़ी बहुत सेवा की जाती है भगवान की, उसका बहुत ज्यादा मूल्य और लाभ होता है। साथ साथ में ये दामोदर लीला का महीना भी है। दामोदर लीला अर्थात जिस लीला में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी के द्वारा एक उखल से बांध दिया था, तो इसलिए इस महीने में जो कि दामोदर लीला का महीना है, पद्म पुराण में बताया गया है कि सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित ये प्रार्थना या स्तुति भगवान की, श्री दामोदराष्टकम, इसको गाना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट के शिष्यों में से और पार्षदों में से थे, उन्होंने हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में यह वर्णन किया है। हरि भक्ति विलास ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में हमें बतलाया जाता है कि एक भक्त को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जैसे संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए भगवान ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अनेक ऐसे धर्म शास्त्र दिए हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे हैं ऐसे ग्रंथ हैं। परंतु विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए ऐसे कौन से आचार संहिता है कि हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए, कैसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, कैसे उत्सव मनाने चाहिए, कैसे साधना जप तप करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, कैसे भक्तों के बीच में संबंध रखने चाहिए, इन संपूर्ण तथ्यों का वर्णन बड़े विस्तार में सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में करते हैं। और ये वर्णन करते करते अनेक वैदिक शास्त्रों से वो प्रमाण रखते हैं। तो ऐसे अनेक अध्यायों में से ये 16वां अध्याय जो है हरि भक्ति विलास का, इसमें सनातन गोस्वामी पाद ने कार्तिक महीने का वर्णन किया है। कार्तिक महीने की महिमा का उल्लेख पाया जाता है। और इस 16वें अध्याय के पहले भाग में वो दामोदराष्टकम का वर्णन करते हैं, जो कि सत्यव्रत ऋषि ने कहा था या गाया था जब शौनक ऋषि और नारद मुनि के बीच में संवाद हो रहा था। तो ये सारी बातें, सारे पुराणों की रचना तो आप जानते हैं कि व्यासदेव जी ने किया था। तो जब दामोदराष्टकम का वो वर्णन करते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने ही ग्रंथ के ऊपर एक टीका लिखी थी, दिग्दर्शनी टीका। ये एक प्रथा जो है हम अक्सर देखते हैं संस्कृत ग्रंथों में और विशेष रूप से भक्ति के ग्रंथों में। कोई महान आचार्य एक ग्रंथ की रचना करते हैं, परंतु शायद सोचते हैं कि इस ग्रंथ का स्पष्टीकरण और होना चाहिए ताकि सभी लोग ठीक तरह से समझ पाए कि इसका तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। इसलिए वो अपने ही विरचित ग्रंथ के ऊपर एक टीका लिखते हैं। तो ऐसे दिग्दर्शनी टीका सनातन गोस्वामी लिखी है, और हरिभक्ति विलास में जो उन्होंने पद्म पुराण के इस दामोदराष्टकम का वर्णन किया है, इसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी है। काफी विस्तार में उन्होंने समझाया है कि दामोदराष्टकम प्रार्थना का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। सनातन गोस्वामी न केवल महान भक्त थे, भगवान के पार्षद थे वो, परंतु बहुत बड़े विद्वान भी थे। इसलिए बहुत ही विस्तार में, बहुत ही विद्वत्ता पूर्वक उन्होंने दामोदराष्टकम का विवरण और टीका किया है। तो ये दामोदर लीला कब हुई थी आप में से कोई जानते हैं? कौन से दिन पर हुई थी? ये गोवर्धन पूजा के दिन पर हुई थी। और वैसे दिवाली जो है, वैसे दिवाली का दिन भी मानते हैं जो कि अमावस्या की तिथि है कार्तिक मास में, और उसके बाद वाले जो है यह है शुक्ल प्रतिपद। तो अमावस्या के बाद वाला दिन है गोवर्धन पूजा का दिन। तो इस तिथि पर दामोदर लीला हुई थी। कब हुई थी? जब श्री कृष्ण कितने वर्ष के थे आप जानते हैं? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन लीला जब हुई भगवान कृष्ण की, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रात उठाया, उस समय श्री कृष्ण की आयु क्या थी? 7 वर्ष की थी। तो उसी तिथि पर, परंतु 3 वर्ष पहले ये दामोदर लीला हुई थी। तो जब दामोदर लीला हुई थी, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था, तो उस समय श्री कृष्ण की आयु थी 4 वर्ष की थी। और दामोदर लीला का वर्णन सतव्रत मुनि इस दामोदर अष्टकम में करते हैं। और सनातन गोस्वामी पाद अपने हरि भक्ति विलास में कहते हैं, दामोदराष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्यम दामोदराकर्षी पठेत सत्यव्रतोदिकम सत्यव्रतोदिकम। ये सत्यव्रत मुनि वो सत्यव्रत राजा नहीं है जो कि समुद्र में प्रलय जल में घूम रहे थे और जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार स्वीकार किया। ये सत्यव्रत मुनि बाद में चले फिर मनु बन गए, लेकिन ये सत्यव्रत ऋषि अलग है। तो यहाँ हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दामोदराष्टकम नाम स्तोत्रम, ये स्तोत्र जिसका नाम है दामोदराष्टकम दामोदर अर्चनम, ये वास्तव में इसका पठन करने से पठेत ये दामोदर की अर्चना ही हो जाती है। तो अर्चना विधि जो है इसका तो उल्लेख शास्त्रों में है और हम देखते भी हैं, प्रतिदिन मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई भक्त आरती उतार रहे होते हैं, कोई भोग चढ़ा रहे होते हैं, श्रृंगार कर रहे होते हैं, तो ये सब अर्चना है। परंतु अर्चना के और भी अनेक तरीके हैं। जैसे जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के सुंदर लीलाओं का पठन करते हैं, स्मरण आदि करते हैं, ये भी एक प्रकार की अर्चना है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दामोदर अर्चनम। तो दामोदर अर्चनम कैसे होता है? दामोदर की सेवा करने से, श्रृंगार करने से, ये सब तो है, परंतु दामोदर अष्टकम कार्तिक महीने के या दामोदर मास के प्रतिदिन पठन करने से, गाने से, स्मरण करने से भी होता है। నిత్యం, నిత్యం దామోదరాకర్షి. నిత్యం అర్థాత్ ఈ నిత్య సిద్ధ హై, ఏ ప్రార్థన కోయి సాధారణ ప్రార్థన నహీ హై. ఔర్ ఇస్ ప్రార్థన కో గానే సే, ఇస్కా స్మరణ కర్నే సే ప్రతిదిన కార్తీక మహీనే మే దామోదర భగవాన్ కో హమ్ ఆకర్షిత్ కర్ సక్తే హై. దామోదర ఆకర్షి, తో యే దామోదర అష్టకం కా గుణ క్యా హై కి యే దామోదర ఆకర్షి హై. భగవాన్ దామోదర కో హమ్ ఆకర్షిత్ కర్ సక్తే హై. పఠేత్ సత్యవ్రత ఉదితం, తో సత్యవ్రత ఋషి ద్వారా యే బోలీ గయి థీ ఔర్ యే పద్మ పురాణ మే పాయా జాతా హై. తో ఇసిలియే సనాతన గోస్వామీ ఔర్ సత్యవ్రత ముని ఔర్ వ్యాసదేవ్ ఔర్ శీల ప్రభుపాజీ కే కహనే పర్ హమ్ సబ్ యహాన్ హమారే సంస్థా మే అంతర్రాష్ట్రీయ శ్రీ కృష్ణ భావన అమృత సంఘ మే ఇస్ బహుత్ హీ సుందర్ ఔర్ మధుర్ మాస్ కార్తీక మాస్ మే ప్రతిదిన్ దో బార్ యా కమ్ సే కమ్ ఏక్ బార్ యే దామోదర అష్టకం గాతే హై. ఔర్ సాథ్ సాథ్ హమ్ భగవాన్ శ్రీ దామోదర్ కో, యశోదా దామోదర్ కో ఔర్ రాధా దామోదర్ కో హమ్ దీప్ అర్పణ కర్తే హై. తో యే యాద్ రఖియే, ఆప్ దామోదర్ మహీనే మే కార్తీక మహీనే మే జహాన్ భీ క్యూ నా హో, రేల్గాడీ మే భీ క్యూ నా హో, ఆప్ యే దామోదర్ అష్టకం గానా భూలియే నహీ. ప్రతిదిన్ కమ్ సే కమ్ ఏక్ బార్ ఔర్ రాధా దామోదర్ యశోదా దామోదర్ కో దీప్ అర్పణ కర్నే కే లియే భూలియే నహీ. ప్రతిదిన్ ఇస్సే బహుత్ జ్యాదా లాభ హోతా హై. ఐసే కార్తీక మహీనే మే సేవా కర్నే సే కౌన్ సే లాభ హోతే హై, యే ఏక్ అలగ్ విషయ హై. పరంతు పిచ్లే రవివార్ కో హమ్ బతా చుకే హై కి వాస్తవ్ మే భక్త లోగ్ కేవల్ భక్తి హీ చాహతే హై. ఔర్ ఇస్ మహీనే మే అధిక్ భక్తి కర్నే సే భక్తి మే హమ్ బహుత్ తేజీ సే ప్రగతి కర్తే హై. तो आइए अभी श्री दामोदर अष्टकम के श्लोकों का पठन करते हैं या उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस महीने में हम तो रोज गाते हैं ये स्तोत्र. जब रोज गाते हैं तो इसका मतलब तो समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, ताकि जब हम अगली बार गाएं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम क्या गा रहे हैं, और फिर और भावपूर्ण रीति से हम गा पाएंगे. आप जानते हैं कि भगवान श्री दामोदर या श्री कृष्ण भावग्राही हैं, हमारे भाव को ग्रहण करते हैं. यदि यूं ही कोई दीप अर्पण कर लेता है और यूं ही कोई दामोदर अष्टकम गा लेता है, फिर भी उसे बहुत लाभ मिलता है, तो फिर कैमुत्य न्याय, बिना भाव के किए हुए यूं ही सकृत एक बार ऐसे ही अकस्मात कर दिया तो इतना लाभ होता है. तो जो व्यक्ति भावपूर्ण मानसिकता में दामोदर अष्टकम को गाता है और दीप अर्पण करता है, तो उसे और कितना अधिक लाभ होगा. तो इस रविवार को और आने वाले रविवार को भी हम ये दामोदर अष्टकम के श्लोकों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे. अष्टकम अर्थात आठ, आठ भागों के अर्थात आठ श्लोक. ये आठ श्लोक हैं जिनमें श्री दामोदर का गुणगान किया जा रहा है. क्योंकि आज अनेक कार्यक्रम है, आज इस प्रवचन के बाद भी कीर्तन पर और बहुत से कार्यक्रम है, इसलिए आज का प्रवचन लंबा नहीं होगा, कम समय का होगा. और जितने भी श्लोक हो जाएंगे आज, इस बार एक दो तीन जो भी हैं उसकी चर्चा करेंगे, और जो बचे हुए श्लोक हैं फिर उनकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे. अगले रविवार को है ना? नहीं है, नहीं है. क्या है अगले रविवार को? दिवाली है. अच्छा, शाम को है, तो उसके बाद वाले रविवार में करेंगे. ठीक है, तो याद रखिए, इसका मतलब है कि आपको आना है फिर हर रविवार को. अच्छा, ये बताइए, आप में से कितने भक्त यहाँ दीप दान करने के लिए अभी तक नहीं आए हैं कार्तिक महीने में? हाथ ऊपर कीजिए जो नहीं आए हैं अभी तक दीप दान करने के लिए. ठीक है, तो आज से आप प्रारंभ की। और आप में से जो आए हैं, कितने भक्त प्रतिदिन आते हैं दीपदान करने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। तो यदि आप नहीं आ रहे हैं तो प्रयास कीजिए आने के लिए। हो सके तो थोड़ा कष्ट हो भी जाए, फिर भी आ जाइए, क्योंकि भक्तों के बीच में आके यहाँ भजन कीर्तन करते हुए, भगवान श्री राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर, यशोदा दामोदर का दर्शन करते हुए हम दीपदान करते हैं, तो इसका लाभ और भाव कुछ अलग ही होता है। और यदि फिर आप नहीं आ पाए, ठीक है, घर में कर लीजिए। तो चलिए, पहला पहला श्लोक, पहला पहली पंक्ति जो है वो हम देखते हैं। शायद आप में से हर एक को ये प्रार्थना, ये स्तोत्र कंठस्थ है ना? तो बिना देखे आप बोल सकते हैं कितने भक्तों को ये कंठस्थ है? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। कंठस्थ नहीं है तो कृपया कंठस्थ करने का प्रयास करें। प्रतिदिन यदि आप आते रहेंगे और दिन में एक बार या दो बार गाते रहेंगे तो अपने आप कंठस्थ हो जाएगी ये प्रार्थना। अनुवाद नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो ये पहला श्लोक है। जैसे हम रोज गाते हैं वैसे ही इस श्लोक को हम गाएंगे। आप मेरे पीछे पीछे गाइए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत् कुण्डलं गोकुले व्राजमानम्, यशोदाभियोलोकलाद्धावमानम्, परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यकोप्या, अनुवाद। वह भगवान जिनका रूप सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान हैं, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूं। एक ही वाक्य है, बहुत लंबा है वाक्य, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है और सुनना पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दामोदर अष्टकम में दामोदर लीला का वर्णन है, और इस लीला से संबंधित जो भाव है उसका भी वर्णन है। तो सर्वप्रथम जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, विशेष रूप से ऐसे कार्य जो बहुत बहुत अच्छे हों, बहुत महत्वपूर्ण हों, शुभ हो, भगवान से संबंधित हो, तो हम मंगल का आह्वान करते हैं। इसे मंगलाचरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी व्यासासन पर बैठते हैं, प्रवचन शुरू करने के पहले प्रार्थना कुछ स्तुति करते हैं, भगवान के, गुरुजनों के, ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य आदि आदि, ऐसे बहुत सारे श्लोक होते हैं, तो इनको हम मंगलाचरण कहते हैं। तो ये प्रथा है संस्कृत ग्रंथों की रचना में, और विशेष रूप से भक्ति के संबंध में जो ग्रंथ हैं उनमें, कि प्रारंभ में जो रचना करने वाले भक्त होते हैं, उस कविता की या लेख की, उपन्यास की, जो भी है, वो मंगलाचरण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत के पहले तीन श्लोक भी ये मंगलाचरण है। तो यहां भी नमामि, ये मंगलाचरण, नमामि ईश्वरम। नमामि का मतलब क्या है? मैं नमन करता हूं। नमामि गंगे, है ना, शुरू है ना, नमामि गंगे, कि हे गंगे मैं आपको नमन करता हूं। तो नमामीश्वरम, नमामि ईश्वरम, तो मैं नमन करता हूं ईश्वर को। तो मंगल कब होता है? जब हम भगवान की कृपा की याचना करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान से और भगवान के महान भक्तों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि ने मंगलाचरण कह दिया। क्या कह दिया? नमामीश्वरम। और फिर इसी श्लोक में उन्होंने भगवान के जो विभिन्न उत्कृष्टताएं हैं, श्रेष्ठताएं हैं, उनका भी उल्लेख किया है। अब भगवान परम सत्य हैं, भगवान सर्व ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्व गुण संपन्न है भगवान। जितने भी अच्छे से अच्छे गुणों के बारे में आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे गुण भगवान में हैं, असीमित मात्रा में। तो भगवान के दिव्य गुणों की गणना हम नहीं कर सकते, असंख्य है भगवान के दिव्य गुण। लेकिन यहां पर थोड़े वर्ग हैं भगवान के गुणों के, जैसे उनके तत्व, उनके अस्तित्व का वर्ग, अस्तित्व के संबंध में कोई गुण, या उनके लीला के बारे में कोई वर्णन, या उनके रूप के बारे में कोई वर्णन इत्यादि। तो इस पहले श्लोक में सत्यव्रत मुनि चार प्रकार के ऐसे उत्कृष्टताओं के या श्रेष्ठताओं का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। पहले ही तत्व विशेष, इसको विशेष कहते हैं संस्कृत में, जो उत्कृष्टता है या श्रेष्ठता है उसको विशेष कहते हैं। तो तत्व विशेष, तो भगवान के अस्तित्व की विशेषता या उत्कृष्टता का उल्लेख सर्वप्रथम भगवान या सत्यव्रत मुनि करते हैं। फिर आगे चल के भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, रूप विशेष, और फिर परिवार विशेष, क्योंकि भगवान अकेले नहीं रहते हैं, भगवान के साथ उनका परिवार रहता है, बहुत सारे उनके भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं उनके धाम में। भले हमें बेलगाम में लगे कि हालांकि मंदिर में यहाँ भक्त लोग भरे हुए यहाँ से पीछे तक, फिर भी बेलगाम की संख्या की तुलना में तो यहाँ भक्तों की संख्या बहुत कम है ना, परंतु भगवान के वैकुंठ जगत में अनगिनत भक्त हैं भगवान के, कोई ऐसा नहीं है जो भक्त नहीं है। तो भगवान का बहुत ही विशाल परिवार है, तो परिवार विशेष। और साथ साथ में भगवान वहां रह के अपने परिवार के सदस्यों के सहित क्या करते हैं? लीला करते हैं, तो लीला विशेष। तो ऐसे इन चार उत्कृष्टताओं का उल्लेख इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि करते हैं, तत्व, रूप, परिवार और लीला। तो सबसे पहले तत्व, ईश्वरा, नमामीश्वरम, तो श्री कृष्ण या श्री दामोदर का संबोधन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, तो उन्हें ईश्वर कह के संबोधित करते हैं। यहां ईश्वर मतलब शिव जी नहीं, साधारण जो है यहां पे हमारे समाज में देखते हैं ईश्वर के तो शिव जी को मानते हैं, तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण। तो यहां सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण या दामोदर को ईश्वर कह के संबोधित करने का तात्पर्य है, वो उनको अपना स्वामी मानते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी। तो यह तत्व है कि वे परमेश्वर हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, परम ईश्वर है। ईश्वरों में ऐसे छोटे बड़े ईश्वर बहुत हैं इस भौतिक जगत में, परंतु इन ईश्वरों के ईश्वर हैं श्री कृष्ण। तो ये हुआ तत्व विशेष। और फिर रूप विशेष, उनका रूप कैसे है, उनका शरीर कैसे है, उनका शरीर है क्या कि वो केवल निराकार है। ऐसे ये बहुत गलत धारणा प्रचलित है सारे जगत में, भारत में भी। जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, उनका मानना ये है कि जो परम सत्य है उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, ऐसे वो मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। सत्यव्रत मुनि सबसे पहले ही, जैसे ही ईश्वरम कहते हैं, तुरंत क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपम, कि उनका रूप है। और ऐसे नहीं है कि पहले वो निराकार थे और जब उन्होंने अवतार लिया तो एक रूप धारण कर लिया। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले लोग या बुद्धिहीन लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पहले मेरा रूप नहीं था, लेकिन अब जब मैं यहां प्रकट हो चुका हूं भौतिक जगत में, अब मैं रूप लेकर आया हूं। और उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान जब अवतीर्ण होते हैं इस भौतिक जगत में, तो उनका जो शरीर है, रूप है, वो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, जैसे कि हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा शरीर कैसा है? जड़ पदार्थों का है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर कैसा है? असत। असत अर्थात जो मिथ्या है, मिथ्या अर्थात जो टिकाऊ नहीं है, जो लंबे समय तक टिकता नहीं है। आज तक कोई भी लंबे समय तक टिका नहीं। हमारा शरीर अजित है, अज्ञान से भरा हुआ है। जब हम सोए हुए होते हैं तो कुछ नहीं पता चलता हमें कि हम कौन हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब एक राजा सोता है और सड़क पे एक कुत्ता सोता है तो दोनों बराबर के हैं, क्योंकि राजा को पता नहीं होता कि वो राजा है, कुत्ते को पता नहीं होता कि वो कुत्ता है। नींद में दोनों की समान बुद्धि है, समान ज्ञान दोनों का है, कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से मृत्यु, मृत्यु में भी सभी एक है। जब मृत्यु हो जाते हैं तो चाहे वो राजा हो, पशु हो, कोई भी हो, तो यह शरीर अचित अज्ञान का, नींद में, मृत्यु के समय और जागे हुए समय, जागते हुए समय में भी हम नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी क्या चल रहा है, दूसरों के शरीर में क्या चल रहा है कैसे जानेंगे, अपने मन में क्या हो रहा है कभी कभी भ्रांति होती है, दूसरों के मन में क्या हो रहा है वो कैसे समझेंगे। तो अज्ञान से भरा हुआ है ये हमारा शरीर और मन। तो हमारा शरीर अचित है। और क्या हमारा शरीर हमें 24 घंटे सुख ही सुख प्रदान करता है? नहीं, हमारा शरीर केवल दुख का कारण है। आप में से कितने भक्त डॉक्टर के पास गए हैं आज तक? हाथ ऊपर कीजिए। कोई ऐसा नहीं जो डॉक्टर के पास नहीं गया हो, जो बीमार नहीं पड़ा हुआ हो। किस तरह का शरीर है ये जो बार बार बीमार पड़ जाता है, फिर अंततः इसकी मृत्यु होती है। कितना कष्ट देता है ये शरीर हमें। इसलिए निरानंद। तो हमारा जो शरीर है वो असत, अचित और निरानंद है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, तो उनका शरीर ऐसे नहीं होता है। दिखने के लिए तो ऐसे प्रतीत होता है, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, नाक है, दो कान हैं, दो आंखें हैं, जैसे कि हमारे हैं। इसलिए अल्पज्ञ जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं, गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान का रूप तो दिखने जैसे, दिखने के लिए तो हमारे जैसे है, इसलिए हमारा शरीर तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, तो उनका शरीर भी वैसे ही होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्ममायया। मैं जब प्रकट होता हूं भौतिक जगत में, तो उसी आध्यात्मिक देह से प्रकट होता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विशेष भौतिक रूप धारण करके प्रकट होता हूं। जैसे हूं मैं वहां, जो मेरा नित्य रूप है मेरे धाम में वैकुंठ जगत में, उसी नित्य रूप में जो कि मेरी अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित है, ऐसे रूप में मैं यहां प्रकट होता हूं भौतिक जगत में। इसलिए उनका शरीर है सत चित आनंद, और हमारा कैसे है? असत अचित निरानंद। और हम नकली ईश्वर हैं, वो असली ईश्वर है। इसलिए हमें कोई नमन नहीं करता है, ना नमन करना योग्य है, परंतु भगवान को सभी नमन करते हैं। नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। और ये सच्चिदानंद रूप कैसे होता है? ये चिन्मय है, सत अर्थात जो हमेशा के लिए रहता है, जो सनातन है। कभी भगवान के शरीर में कोई घटन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं, जैसे थे वैसे ही बने रहे हैं वो। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो भगवान नव यौवन है, सदैव एक नव युवक की तरह, एक किशोर की तरह दिखते हैं। हमने कभी भी कोई ऐसी तस्वीर, चित्र या मूर्ति भगवान कृष्ण की ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें भगवान के बाल सफेद हैं, या भगवान एक लाठी लेके जो चल रहे हैं, खांस रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहे हैं। ऐसे कभी हम नहीं देखते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान का शरीर है ऐसे नव यौवनम च, कभी अंत नहीं होता है, ये शाश्वत शरीर है चित्त, और ये ज्ञान से पूर्ण है भगवान का शरीर। भगवान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और ये दिव्य ज्ञान भगवान से अभिन्न है और आनंद। और चिन्मय होने के कारण, आध्यात्मिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का शरीर आनंद से पूर्ण है। भगवान के शरीर में कभी भी कोई कष्ट या दुख नहीं हो सकता है। तो ये है सच्चिदानंद रूप का तात्पर्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, दिव्य शरीर है, ये बहुत ही सुंदर है, और भगवान के सौंदर्य का घटन कभी नहीं होता है। जब कोई बहुत ही सुंदर रूप वाला व्यक्ति होता है, उसके चित्र आप देखिए, योग अवस्था में आप देखेंगे कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं ये। और जब 80-90 साल के हो जाते हैं, फिर उनका चित्र देखिए, विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बार मैं किसी के यहाँ गया था, कोई भक्तों ने भक्त ले गए थे, तो वहाँ तस्वीर रखी थी किसी की, तो वहाँ जो रहने वाले थे उनसे मिले, उन्होंने हमारा स्वागत किया। वो वृद्ध थे, तो जब वो अंदर गए कमरे में, तो मैंने पूछा ये किनका तस्वीर है? बोले उन्हीं का है ये, उनका है। विश्वास नहीं किया जा रहा था, हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे तस्वीर देखे हैं कि ये युवक है और उन्हीं की तस्वीर जो है बुढ़ापे में हमने देखा है, परंतु इतना भेद होगा हम बिल्कुल पहचान नहीं पाए कि ये संभव ही नहीं हो सकता कि दोनों इतने सुंदर दिख रहे हैं उस चित्र में, और यहाँ आप उनको देखते हैं तो कुछ आश्चर्य हो जाता है कि ये शरीर इस शरीर में परिवर्तित हो गया है, सौंदर्य का घटन इतने बड़ी मात्रा में हो गया कि पहचान भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए यह संसार का जो सौंदर्य है, ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा। और जब भगवान का, जब इस संसार का जो सौंदर्य है वो होता भी है, तो बहुत कम मात्रा में होता है, परंतु भगवान का सौंदर्य असीमित है। राजा कुलशेखर का नाम आपने सुना होगा, तो राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में एक बहुत सुंदर पंक्ति कही है, इदं शरीरं शतसंधिजज्जरं पतत्यवश्यं परिणामपेशलं किं औषधिं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब। वो कहते हैं इदम शरीरम, ये जो शरीर है हमारा भौतिक शरीर, शत संधि जर्जरम, हमारे संधि है ना, कितने सारे संधि हैं शरीर में, कितने हैं आप गिन सकते हैं? पता नहीं, डॉक्टर लोग को बता सकते हैं कितने संधि होते हैं? बहुत सारे होते हैं, सैकड़ों संधियां होते हैं, हजारों संधियां, ये भी एक संधि, ये एक संधि, ये भी, ये भी, ये 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 ये, कितने सारे संधि होते हैं शरीर में। और जिनको आर्थराइटिस है, संधिवात का कष्ट है, आप तो जानते होंगे कि कितने संधियां हैं। जब जवान होते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है संधि कैसे होते हैं शरीर में, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है, फिर ये दर्द करने लगता है, वो दर्द करने लगता है, तो हजारों ऐसे संधियां हैं शरीर में जर्जरम, वो बहुत कष्ट देते हैं, जाके वो सड़ने लगते हैं। तो इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतत्यवश्यम, पतति अवश्यम, ये शरीर का पतन निश्चित है, होगा ही, ऐसे संभव नहीं है कि हम ये शरीर हमारा बना रहेगा, नहीं, नष्ट होने वाला है एक दिन। परिणाम अपेशलम, इसका जो सौंदर्य है, जिसके बारे में हमें बहुत अभिमान है, ये सौंदर्य भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आज सुंदर कोई लग रहा है, कल बहुत कुरूप लगेगा, चाहे वो सिनेमा के बहुत बड़े बड़े अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, बहुत अपने सौंदर्य के लिए जाने माने हो, लेकिन बुढ़ापे में कैसे दिखते हैं। किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, राजा कुलशेखर काफी कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी भक्त लोग, दो जो संसार में लोग हैं, उनको हिलाने के लिए अपने माया के गोदी में सोए हुए होते हैं, निद्रा से जगाने के लिए कई बार कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। हे मूढ़ व्यक्ति, हे दुर्मति, दुर्मति अर्थात जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, मूढ़ अर्थात मूर्ख, तो हे मूर्ख, हे अल्पज्ञ, क्यों इतने अपने शरीर की बीमारी के लिए दवाई के ऊपर दवाई, दवाई के ऊपर दवाई लेते जा रहे हो? ये शरीर है ही ऐसे, तो क्या इस कितना सुधार करते रहोगे इसका? निरामयम कृष्ण रसायनम पीबा, इसलिए तुम कृष्ण रसायनम पियो, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण के रूप आदि गुण लीला के बारे में सुनो, कहो, स्मरण करो, इस रसायन का पान करो। निरामयम, ये तुम्हें सारे बीमारियों से मुक्त करेगा, अर्थात तुम्हें अंततः एक शरीर, ऐसा शरीर प्राप्त कराएगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा ही एक सच्चिदानंद शरीर हमें प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण का शरीर ऐसे नहीं है, शतसंधि जर्जरम वाला शरीर, परिणाम अपेशलम वाला शरीर नहीं है श्री कृष्ण का। तो इसलिए यहां वो रूप विशेष कहते हैं। तो रूप विशेष कैसे है? भगवान का सौंदर्य। और फिर लसत कुंडलम, लसत कुंडलम, जब श्री कृष्ण दामोदर भागते हैं माता यशोदा से, क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई मस्ती की है, कोई शरारत की है। क्या शरारत की? जो दही मक्खन आदि भरे हुए मटके थे, उनको चुपके से तोड़ दिया कमरे के अंदर। उनको गुस्सा आया, माता यशोदा ने मुझे दूध पिला रही थी, लेकिन अचानक उठ के चली गई। तो जब चली गई और मेरा पेट नहीं भरा, तो मैं असंतुष्ट हूं, मेरी माता ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? तो गुस्सा आया, और श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे गुस्से को कैसे मैं व्यक्त करूं, तो वहां देखा कि कोई मटके आदि हैं, उनको तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, तब थोड़े होश ठिकाने आ गए कि अरे मैंने क्या कर दिया, अब मुझे दंड मिलेगा। अब दंड लेना नहीं चाहते थे, तो वहां से निकल गए। जब माता यशोदा कमरे में आई, तो उन्होंने देखा कि सब जगह ये मटके टूटे पड़े हुए हैं और दही मक्खन सब जगह बिखरा हुआ है जमीन पर। तो वो जान गए कि ये किसका काम है, ये श्री कृष्ण का काम है। तो हंसने लगे, उनको अच्छा लगा कि कृष्ण इतने शरारत कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा मैं कृष्ण की मां हूं, और श्री कृष्ण को अच्छी तरह से संस्कार देना मेरा काम है, अच्छी तरह से उसे सबक सिखाना क्या सही है क्या नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए माता यशोदा प्रसन्न हुई फिर भी क्रोधित भी हुई, तो उन्होंने हाथ में छड़ी ली। अब देखती हूं ये कृष्ण कहां है, अभी दंड देती हूं, तो कृष्ण के पीछे निकले। जब माता यशोदा को देखा तो कृष्ण भागने लगे डर के मारे, इसका वर्णन अभी आगे करेंगे। तो जब भाग रहे थे तो इनके जो कुंडल हैं जो मकर के आकार के हैं वो हिल रहे थे, और हिलते समय वो गालों के पास से गुजर रहे तो और भी उनका सौंदर्य बढ़ रहा था। किनका सौंदर्य बढ़ रहा था, श्री कृष्ण के गालों का या उन कुंडलों का? कुंडलों का। वैसे जब उद्धव जी श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे होते हैं और अपने विचारों को भाव को व्यक्त कर रहे होते हैं विदुर जी के सामने, तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, भूषण भूषणांगम, उनका शरीर आभूषणों का आभूषण है। जब साधारण इंसान जो होते हैं वो आभूषण पहन लेते हैं, क्यों पहनते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, ताकि शरीर और भी सुंदर दिखे। तो इंसान जो है, मनुष्य जो होते हैं, वो आभूषण इसलिए पहनते हैं कि अपना शरीर और सुंदर दिखे, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा शरीर सुंदर नहीं है, इसलिए हमें ये सब चीजें चाहिए शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना असीमित है कि आभूषणों की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण आभूषणों को ग्रहण करते हैं। परंतु होता क्या है, आभूषणों का सौंदर्य बढ़ जाता है श्री कृष्ण के शरीर पे होने के कारण। तो इसलिए उद्धव जी कहते हैं भूषणम भूषणांगम, तो इन आभूषणों से आभूषणों का सौंदर्य बढ़ जाता है, और भक्त लोग श्री कृष्ण को ऐसे याद भी करते हैं। तो सत्यव्रत मुनि याद कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के मकर कुंडल कैसे हिल रहे थे जबकि वो भागे जा रहे थे। और आगे कहते हैं गोकुले भ्राजमानम, ये घटना कहां हुई, गोकुल में हुई। भ्राजमानम, भ्राजमानम अर्थात जो प्रकाशमान है, तो गोकुल में प्रकाशमान कैसे रहते हैं श्री कृष्ण, अपने परिवार सहित। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब ये संसार में कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है तो वो अकेले कहीं नहीं जाता, उसके साथ में उसके बहुत सारे सेवक आदि सब रहते हैं। तो जो सृष्टि के सबसे बड़े व्यक्ति हैं श्री कृष्ण, जब वो यहां प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, तो वो अकेले कैसे आएंगे, वो भी अपने नित्य सिद्ध भक्तों को साथ में लेकर आते हैं, उनका परिवार भी साथ में आता है। जैसे आप जब छुट्टी में जाते हैं परिवार को साथ में लेकर जाते हैं ना, ऐसा नहीं कहते कि मैं मजा करके आऊंगा आप लोग रह जाओ, आप परिश्रम करते रहो मैं छुट्टी लेके घूम के आ जाता, नहीं, परिवार के सदस्यों को लेके जाते हैं आप साथ में, कभी वृंदावन गए कभी मायापुर गए। तो इस तरह से परिवार ये हर एक के पास होता है, तो कृष्ण के पास क्यों नहीं होना चाहिए, और परिवार का गर्व सभी को है। प्रभुपाद जी कह रहे थे एक प्रवचन में, वो कहीं किसी के घर में गए तो वो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों का पहचान करा के दे रहा है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी ये है वो है। तो एक परिवार है, तो परिवार की शोभा होती है, कि एक व्यक्ति की शोभा परिवार में भी होती है कि देखो मेरे पास कितना बड़ा परिवार है, मेरे बेटे हैं बेटियां हैं इत्यादि इत्यादि। तो जब एक मनुष्य के लिए ऐसे परिवार हो सकता है और उस परिवार के कारण वो बहुत खुश लगता है, तो भगवान कृष्ण के लिए क्यों नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप में से हर एक के घर में आपके परिवार की एक तस्वीर तो होगी दीवार पे कहीं, तो या तो अंदर कहीं तो होगी, नहीं होती है? अक्सर अनेक घरों में होता है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका चित्र एक बार लेके फिर वो दीवार पे या कहीं तो लगाते हैं। तो परिवार सभी का होता है, कृष्ण का भी है। तो श्री कृष्ण जो प्रकाशमान है स्वयं और शोभायमान है गोकुल में, और भी उनका जो प्रकाशमान जो गुण है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। कैसे भक्त? कोई साधारण परिवार के सदस्य नहीं है उनके। किसी साधारण परिवार में क्या होता है, कोई कहता है मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता, कोई कहता है ये नहीं है, कोई कहता वो, उसके बीच में दोनों भाइयों के बीच में कुछ मतभेद है, तो फोटो में दिखने के लिए तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन सत्य कुछ और होता है। एक बार मैं किसी के घर में गया था तो उनके दो चित्र थे पति पत्नी के। तो एक तो शादी का चित्र था, जो शादी हुआ था उस समय का चित्र था, और बाद में कई 5-10 साल बाद जितने भी साल हो गए उसका और एक चित्र था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इन दो चित्रों में अंतर देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। क्या अंतर है? यहां हम खुश लगते हैं, यहां खुश नहीं लगते हैं। शुरुआत में तो सब खुश रहते, एक के बाद एक भी परिवार में आ जाते हैं, फिर ये मतभेद हो गया, वो हो गया, ये हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन श्री कृष्ण का परिवार ऐसे नहीं, वहां इतना आनंद ही आनंद है। तो ये है परिवार विशेष, परिवार की उत्कृष्टता श्रेष्ठता, ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा। और हम भी इसी परिवार में जाना चाहते हैं, इसलिए हम राधा गोकुलानंद मंदिर में आते हैं। हमारे जीवन की परिपूर्णता है कि हम भी ऐसे परिवार में प्रवेश प्राप्त कर सकें। ये सही परिवार है। जो भौतिक जगत में परिवार पारिवारिक जीवन होता है वो श्री कृष्ण के धाम के पारिवारिक जीवन का एक विकृत प्रतिबिंब है। असली पारिवारिक जीवन तो वहां है, और वही श्री कृष्ण अपने परिवार को उसी स्थान से गोलोक से लेकर यहां आते हैं और गोकुल में यहां पे शोभायमान होते हैं। तो इसलिए तत्व विशेष हो गया, रूप विशेष हो गया, और परिवार विशेष भी हो गया। अब आई बात लीला विशेष की। हमने देखा लसत कुंडलम, जब श्री कृष्ण भाग रहे हैं तो उनके कुंडल हिल रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं, कैसे? यहां तीसरे भाग में यहां बताया गया है, यशोदा भिया, भिया अर्थात डर के, यशोदा से डर के, यशोदा भिया उलुखलाद, मतलब उखल जो होता है उससे, डर के मारे उखल से धावमानम, वो भाग रहे हैं। तो उखल के ऊपर चढ़े हुए थे श्री कृष्ण, और चढ़ के क्या कर रहे थे, ऊपर जो छत से लटकने वाले जो मटके थे जिनमें दही मक्खन आदि रखा हुआ था उनको तोड़ दिया था, और तोड़ के जो उनमें से मक्खन निकल रहा था वो बंदरों को खिला रहे थे। तो बंदर भी आके उनसे मक्खन ले रहे थे, और जैसे जैसे वो मक्खन उनको दे रहे थे तो इधर उधर देख भी रहे थे कि कहीं माता यशोदा तो नहीं जाएंगी अचानक। तो यदि उन्होंने देखा माता यशोदा आ रही तो तुरंत कूद के भाग जाएं, ऐसे ये उनकी योजना थी। तो जब माता यशोदा को देखा तो श्री कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उखल के ऊपर से कूद पड़े नीचे जमीन पर। इस समय 4 साल के थे तो इतनी आयु थी कि वो कूद सकते थे, तो कूद के भागने लगे। यशोदा भियोलु खला धावमानम, तो उखल से कूद के फिर वो भागने लगे, धावमानम। संस्कृत भी हिंदी मराठी आदि के समान है, धावमानम धावता है। तो उखल से कूद के यशोदा माता के डर से वो भागने लगे, और फिर पर अमृष्टम, परंतु पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, पीछे से पकड़े गए, किनके द्वारा पकड़े गए, माता यशोदा के द्वारा। तो माता यशोदा ने उन कृष्ण को पीछे से कैसे पकड़ा, इसलिए अत्यंत अत्यंततः द्रुत्य, और भी तेजी से भाग के। माता यशोदा का शरीर थोड़ा भारी था, फिर भी श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, इसलिए माता यशोदा से ज्यादा तेज नहीं भाग सके। तो हालांकि माता यशोदा को थोड़ा कष्ट हो रहा था भागते समय, फिर भी श्री कृष्ण इतने छोटे थे और इतनी तेजी से भाग नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पीछे भागी। और जब पीछे भागी तो तेजी से भाग के पर अमृष्टम, पीछे से पकड़ लिया, कैसे, अत्यंततः द्रुत्य, और तेजी से भाग के पीछे से श्री कृष्ण को पकड़ लिया। तो किसने पकड़ लिया, गोपिया, गोपी ने, कौन से गोपी ने, माता यशोदा ने। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। वैसे ये शुरुआत का श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्थान का विवरण इसमें यहाँ है। और जैसे मैंने पहले कहा, इसमें चार प्रकार की उत्कृष्टताएं या विशेषताएं सत्यव्रत मुनि कहते हैं, तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष और लीला प्रवेश, लीला विशेष। तो भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से माखन चोरी करना, छुप छुप के करना और उखल के ऊपर चढ़ जाना, बंदरों को मक्खन बांटना और फिर माता यशोदा के कमरे में आने पर कूद पड़ना उखल से और उनके डर से भाग जाना, ये एक लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण डर रहे हैं किसी से, ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन डरे हैं, इसलिए तो लीला है। भगवान नकल नहीं कर रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं डरने का, वास्तव में डर गए हैं, क्योंकि वो वात्सल्य भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये है उनकी विशेषता, लीला विशेष। तो ऐसे सत्यव्रत मुनि ने यहां इस पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चार विशेषताओं का वर्णन किया है। अब वैसे भी समय हो गया, तो मैंने सोचा था कि दो श्लोकों का वर्णन करूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो आने वाले रविवारों में, अगले रविवार को तो नहीं, उसके बाद वाले रविवार में फिर हम और इसी दामोदराष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री दामोदराष्टकम की जय, श्री दामोदर मास की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
लीला से संबंधित एक प्रश्न है कि जैसा हम जानते हैं भगवान की कुछ लीलाएं होती हैं जो भगवान केवल भौतिक जगत में करते हैं, वो लोग धाम में नहीं करते, तो ये लीला भी क्या उनमें से है जो केवल इस जगत में होती है या गोलोक धाम में भी होती है?
गोलोक धाम में क्या परिस्थिति है, भगवान की आयु क्या होती है, 16 वर्ष की। तो भगवान नित्य किशोर है गोलोक वृंदावन में। वहां गोलोक वृंदावन में ऐसी लीला नहीं होती जो कि यहां भौम वृंदावन में भगवान प्रदर्शित करते हैं, जैसे उनका जन्म होना, तथा कथित जन्म, माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो जाना और फिर एक छोटे से शिशु का रूप स्वीकार करना और फिर बड़े होते 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 जब लगभग किशोर अवस्था तक प्राप्त हो गए, उसके बाद फिर उनका शरीर और बढ़ा नहीं और उनके शरीर की वृद्धि उस आयु के बाद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो उस आयु तक पहुंच गए थे या उस दिव्य रूप को प्राप्त कर गए थे जो कि नित्य है गोलोक वृंदावन में। तो भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से ऐसे किशोर अवस्था में विद्यमान है गोलोक वृंदावन में। इसलिए भौतिक जगत की विशेषता ये है, ये केवल जीवों के लिए नहीं है, बद्ध जीवों के लिए, भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ इसमें आनंद लेते हैं, वृंदावन धाम को, गोकुल को, गोलोक को यहाँ प्रकट करा के ऐसी लीलाएं करते हैं जो गोलोक वृंदावन में करना इतना संभव नहीं है। जैसे असुरों का वध करना, गोलोक वृंदावन में असुर कौन से होंगे, केवल भौतिक जगत में असुर होते हैं, फिर भी भगवान ऐसी लीलाएं करना चाहते हैं। इसलिए भौतिक जगत की एक भूमिका और इनका एक उद्देश्य बहुत विशेष है, भगवान की लीलाओं को संपूर्ण करने में। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भी आप आज से अवश्य आइए प्रतिदिन दीपदान और दामोदर अष्टकम के लिए, इस कार्तिक महीने में जितने भी दिन बचे हैं उनमें। हरे कृष्णा।